राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 जुलाई 1992 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
एकादश स्कंद में बीसवां अध्याय भागवत के एकादश स्कंद में बीसवां अध्याय उसमें लिखा है कि योगास्त्रयो में आप्रोक्ता भगवान कहते हैं मैंने तीन योग बताए हैं निराम श्रेयो विदित्सया मनुष्यों के कल्याण के लिए उनके लिए तीन बताए हैं। उन तीनों में खास खास चीज क्या है कि अहम न अहम इस अहम को मिटाना है निर्ममो निरहंकार ये मिटाना है इसको ये होता है ज्ञान योग में और बदल देना होता है भक्ति योग में और शुद्ध करना होता है कर्म योग में। ये तीन बात है। तो भक्ति योग का अध्याय कल बताया आपको 12वां अध्याय भक्ति योग का है। गीता में तीनों योगों का वर्णन बड़ा बढ़िया रीति से है बड़ा सुंदर रीति से है। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का ये प्रश्न था जैसे 11वें अध्याय के अंत में अनन्य भक्ति का वर्णन है मत कर्म कृन् मत पर्म मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समय मामेति पांडव 5 साधन है। तो 12वें के आरंभ बताया कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते इस पर प्रकार से नित्य निरंतर आपकी उपासना करते हैं और एक अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं निर्गुण की उपासना तेषां के योगवित्तों उनमें योगवत्ताओं में श्रेष्ठ योगवित्ता कौन से हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्ति करते मेरी भक्ति में अन्य भक्ति में वो श्रेष्ठ है उस भक्ति का वर्णन किया। अब वो जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं वो कैसे करते हैं किस तरह से चलते हैं 8 विशेषण तो पहले दिए थे 12वें अध्याय में परंतु ज्ञान योग की बात 13 और 14 2 अध्याय है इसमें ज्ञान योग की प्रधान बात बताते हैं। तो ज्ञान में क्या होता है ज्ञान में जड़ और चेतन का विवेक होता है सत और असत का नित्य और अनित्य का इनका विवेचन अलग अलग विभाग होता है। जड़ता का त्याग करके उस चिन्मयता में स्थित होना ये ज्ञान योग होता है। तो जड़ता का त्याग कैसे करें? जड़ क्या है? प्रकृति और प्रकृति का कार्य। सब संसार जड़ है, ये जड़ ऊपर दिखने वाला। इनके भीतर जो ये चेतन है आत्मा, वो परमात्मा का साक्षात अंश जो जीवात्मा स्वयं है, चाहे भाई हो बहन हो कोई हो, उसमें चेतन वो परमात्मा का अंश है। और ये शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये है सब प्रकृति का अंश। कल भी बात बताई थी कि जैसे हम आप सब अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, ऐसे सब संसार स्थावर जंगम दोनों परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, इन दोनों से पैदा होते हैं। तो परमात्मा का अंश है इसमें जीवात्मा, वो नित्य है, और प्रकृति का अंश ये शरीर है। स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, ये परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। और स्वयं परमात्मा का अंश है, वो बदलने वाला नहीं है। ये खास बात है ज्ञान योग की, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील का अलग अलग विभाग। अपना स्वरूप अपरिवर्तनशील है और ये शरीर और संसार का स्वरूप परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्या? बदलने वाला, एक रूप नहीं रहने वाला, हर दम बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, किसी समय भी इसका बदलना छूटता नहीं। जन्म में, मरण में, स्थिति में, उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, स्वर्ग में और प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में, प्रगति हरदम परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। और परमात्मा तत्व चेतन है, वो कभी नहीं बदलता, वो सदा है जो का तो रहता है। अब उन दोनों का विभाग कैसे हो, कैसे ज्ञान मार्ग में चले, तो ये 13वें अध्याय में बात बताई। इदं शरीरं कौन थे अक्षेत्र मित्र विधीयते, ये जो इदं शरीरं, ये इदं कर गया मानव शरीर, या मनुष्य शरीर मात्र जड़ प्रकृति है, उनका नमूना ये आपके हमारे शरीर है। ये 5 भूतों का ये क्षेत्र का रहता है। और एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये 2 विभाग बताए यहां से। अब ज्ञान योग में एक बात नई बता दें, जो ध्यान दें आप, जो गीता का अभ्यास करना चाहे उनके लिए बड़ी काम की चीज है। ज्ञान योग 2 तरह का होता है, एक साथ में भक्ति रहे और जड़ चेतना का विवेक हो, ऐसा विभाग है एक तो, और एक केवल जड़ चेतन का विभाग, ऐसा है। ये 2 भाग है। 2 भागों में से दोनों भागों का वर्णन करना भगवान ने कहा। उन भागों में से पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक, 13वां अध्याय के 34 श्लोक है, 34, उन 34 में 1 से 18 तक उस ज्ञान योग का वर्णन है, जिस ज्ञान योग में भक्ति का मिश्रण है, साथ में भक्ति है। और 19 से 34 तक उस ज्ञान योग का वर्णन है कि जिसमें केवल प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दोनों का विवेक हो, अलग अलग। ये 2 बात है। तो ये 2 विभाग समझ लेना चाहिए। पहले विभाग में 18 श्लोक है, दूसरे में 19 से लेकर 34 ये 16 श्लोक है। 17 गुण 34 वैसे 17 गुना 18 हो गया, तो 34 16 हो गया। ऐसे 18 और 16 का ये प्रकरण है, ये खास रहेंगे। अब इसमें क्या क्या प्रकरण है वो थोड़ा बता देते हैं, जैसे 12वें अध्याय में बताया। पहले श्लोक से बारहवें तक ज्ञान योग कर्म योग के विषय में बीच में था, 13 से 20 तक भी 8 श्लोकों में तत्पुरुषों के लक्षण बताए। ऐसे इसमें पहला और दूसरा 13वां अध्याय के 2 श्लोक है, उनमें है प्रकृति पर क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का वर्णन है। इसको भगवान ज्ञान कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान का अलग अलग ज्ञान, वो मेरे मत में ज्ञान है। ये 2 श्लोक ज्ञान के हैं। तो पहला क्षेत्र क्षेत्र के ये बताया, दूसरे श्लोक में क्षेत्र के साथ में परमात्मा की एकता और दोनों के ज्ञान को मेरा ज्ञान कैसे, ये दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्र के, दूसरे में क्षेत्र की परमात्मा के साथ एकता और दोनों के ज्ञान को ज्ञान कैसे, ये 4 लाइनों में 4 बात बताई। क्षेत्र और क्षेत्र की बात पहली लाइन में, एक लाइन में क्षेत्र का वर्णन, दूसरी लाइन में क्षेत्र का वर्णन, तीसरी लाइन में क्षेत्र के साथ परमात्मा की एकता का वर्णन, चौथी लाइन में ये ज्ञान है और मेरे साथ क्षेत्र की एकता, ये बात 4 श्लोक हुए। 4 लाइन 4 में अब 3रा श्लोक है, उसमें क्षेत्र और क्षेत्र का वर्णन होगा। 2 बातें जो कही अभी, इन 2 बातों का विशेषता से वर्णन करने के लिए 3रा श्लोक मुख्य है, जिसमें क्षेत्र के विषय में 4 बात है और क्षेत्र के विषय में 2 बात है। ये बात 3रे श्लोक में बताया, वो मेरे से तू सुन, संक्षेप से मैं कहता हूँ तुम सुनो। ये 3रे तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यथ, और सच जो यत प्रभाव, और वो क्षेत्र क्या है और वो क्षेत्र का प्रभाव, ये मेरा संक्षेप से सुन, ऐसी बात भगवान ने 3रे श्लोक में आज्ञा दी। तत्क्षेत्र वो क्षेत्र है, क्या है वो तत्क्षेत्र का, तत्क्षेत्र यत जो क्षेत्र है, यत यादृक जैसे स्वभाव वाला है, यद विकारी जिन विकारों वाला है, और जिससे जो पैदा होते हैं, ये 4 बात, और क्षेत्र क्या है वो कैसा है उसका स्वरूप सच, और यद प्रभाव से जिस प्रभाव वाला है वो संक्षेप से सो, ये 6 बात कहने के लिए 3रे श्लोक में कहा। ये बात कहा भाई संक्षेप से सुन, तो संक्षेप से सुन तो मतलब होता है कि विस्तार से कहीं वर्णन हुआ है। तो 4थे श्लोक में बताया कि ऋषि वीर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा, ऋषि वीर बहुधा गीतम छंदो भी विविधि प्रसक्त, और वेद मंत्रों से विशेष बताया, और ब्रह्म सूत्रों से, वेदों से उपनिषदों से और ब्रह्म सूत्रों के पदों के द्वारा इसका विस्तार से वर्णन हुआ है, वो मैं संक्षेप से कहता हूँ, ऐसा भगवान ने 3रे श्लोक में कहा, और 4थे में विस्तार की बात बताई। 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप बताते, क्षेत्र क्या है, महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरा, ये 24 तत्व है इसमें। महाभूतानि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की 5 जो तन्मात्रा में सूक्ष्म, और अहंकार महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त, बुद्धि नाम समष्टि प्रकृति, और अव्यक्त नाम प्रकृति, प्रकृति और महतत्व और पाद बुद्धि 7 बताए, महाभूतान अहंकार बुद्धि और अव्यक्त, ये हुआ प्रकृति खास स्वरूप। तो ये 7 प्रकृति विकृति है, प्रकृति प्रकृति अव्यक्त प्रकृति है। आगे 16 बताया, इंद्रियाणि 10 इंद्रियां दस, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, एक अंश एक मन, ये ग्यारह हो गया। और पंच इंद्रिय गोचरा, पांच इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय, ये चौबीस हो गए। सात एक आठ और सोलह, चौबीस हो गए। ये चौबीस तत्वों का वर्णन हुआ है पांचवें श्लोक में। क्षेत्र का वर्णन, इदं शरीरों का एक क्षेत्र है ना, तत्क्षेत्र में यच्च, वो क्षेत्र जो है, वो जो है पांचवें में कहा। अब इसके विकार कितने हैं, वो विकार बताते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति, ये तत् क्षेत्र समासे नष्ट विकार मुझा देता हूं। तो इच्छा द्वेष सुख दुख, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना, संघात और चेतना और धृति, ये सात विकार बताए। ये विकार बता के कहा कि भैया मैंने ये दो बात कह दी, क्षेत्र और क्षेत्र के विकार, ये विकार सहित क्षेत्र है, ये छठे श्लोक में कह दिया। तो पांच और छह में क्षेत्र और क्षेत्र का विकार, यदि विकारी जो पहले कहता तीसरे में, वो विकारों का वर्णन ये हो गया। अब ये बात हो गई तत् क्षेत्र कह दिया, और यदि विकारी कह दिया, और बाकी रहे चार बात, पांच से यह दो बात वो रहेंगी क्षेत्र की, तो क्षेत्र की को पीछे छेड़ रहेंगे। मेरे मत में ये ज्ञान है, ये भगवान ने बताया कि मेरे मत में ये ज्ञान है, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो उसकी बात कह दी भगवान ने। सात में से सात आठ नौ दस ग्यारह, सात आठ नौ दस ग्यारह, पांच श्लोकों में ज्ञान की बात बताई। ज्ञान के बीस साधन है, अलग अलग बीस साधन है, वे ज्ञान के साधन है। इन बीस साधनों का वर्णन ये हुआ ग्यारहवें श्लोक तक, छह सात आठ नौ दस ग्यारह। अब इसमें सात आठ नौ दस ग्यारह, ये कभी भूल जाता हूं भाई, खाम क्षमा करोगे, ऐसा ही है। तो ये बात है। अब इतिहास ये हुआ ज्ञान, तो ये ज्ञान कहां बनना है, तयोर ज्ञानम यत्र ज्ञानं मतं मम, क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। तो ज्ञान केवल सुनना और सीखने से नहीं होता है, ज्ञान होता है साधनों से। तो सात से लेकर ग्यारह तक बीस साधन बताए, ये ज्ञान के साधन है। ये जब होंगे तब तत्व ज्ञान होगा, ये नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा। इस ज्ञान का वर्णन होगा ग्यारह श्लोक तक। अब वो कितना कितना वर्ण है तो बताते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्दवम आचार्य उपासनम शोषणम स्थैर्यम आत्मनिग्रह, ये नौ बताए एक सातवा में, नौ लक्षण बताए ज्ञान के। और तीन आठवा में इंद्रिया से वैराग्यम अनहंकार और जन्म मृत्यु दुख दोष दर्शन, तीन आठवा में है। और तीन नौवे में अशक्ति अनभिष्मा पुत्र दान की आदि, जो एक तो आशक्ति रहित होना, एक पुत्र दान की आदि में अभिषंग नहीं होना, दो ऐसे तीन बताया। नित्य समचित्व इष्टातिशो प्रतिशो, नित्य ही इष्ट अनिष्ट की में अनुकूल प्रतिकूल प्राप्ति में समचित्तता रखना, और मई चारण योग भक्ति व्यचारणी, और मैं अव्यविचारणी मेरी भक्ति, तीन इसमें बता दिया। तो नौ बताए एक में, तीन दूसरे में, तीन तीसरे में, तीन इसमें, कितने हो गए, अठारह हो गया। और दो बता दिया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये दो बता दिए ग्यारह श्लोकों से, ये 20 साधन है। एतद ज्ञानम, ये 20 साधनों का इसका नाम ज्ञान है। अज्ञानम यदाता अन्यथा, इससे जो झूठा है इससे विपरीत है वो विविध अज्ञान है, जैसे मान है अभिमान है अहंकार आदि है, इससे विपरीत वो अज्ञान है। ये 20 साधन का नाम ज्ञान है, ये भगवान ने उपसंहार किया 11वें श्लोक में। तो 7 से लेकर 11 तक ये 20 साधनों का वर्णन है। अब ज्ञान हुआ तो ज्ञान के द्वारा जाना जाए वो क्या चीज है, तो वो परमात्म तत्व है। ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य ज्ञानेन ज्ञाते ज्ञानम ज्ञेय, तो ज्ञेय का वर्णन हुआ, तो ज्ञेय का वर्णन भगवान आरंभ करते हैं। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, पहले में प्रतिज्ञा करते हैं कि ज्ञेय जो है उसको मैं कहूंगा, जिसके जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है, सदा के लिए जन्म मन से रहित हो जाता है, ऐसा ज्ञान है। उस ज्ञान का वर्णन भगवान ने इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयम चोक्तम समासतः, ये 18वें श्लोक से ज्ञान का वर्णन, ज्ञेय का वर्णन है। 11वें से ज्ञान का वर्णन है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व का वर्णन है, ज्ञेय परमात्म तत्व क्या है कैसा है उसका वर्णन हुआ। और 18वें उपसंहार किया कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञान, क्षेत्र कह दिया 5वें 6वें में, और ज्ञान कह दिया 7 से 11 में। ये समास संक्षेप में कहा, पहले कहा समास में सुनू, संक्षेप से कहता हूं तो संक्षेप में तो कह दिया। मदभक्त है, ये मदभक्त आया भक्ति के साथ है, मेरा भक्त इसको जान करके और मेरी प्राप्ति कर लेता है। ये 18 श्लोकों तक ये प्रकरण हुआ, खास याद कर रहे। पहला दूसरा श्लोक है क्षेत्र 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 की का वर्णन ज्ञान से, और 3रे में 6 बातें कहने के लिए प्रतिज्ञा के लिए, 4थे में ऋषियों ने कहा है विस्तार से बात बताई, 5 में क्षेत्र बताया, 6 में क्षेत्र के विकार बताए, 7 में 9, 8 में 1, 10 में 1, 11 में 1, ऐसे 2 12 13 12, तो ऐसे 20 साधन बताए। 20 साधन बता करके फिर भगवान ने ज्ञेय का वर्णन किया, जो ज्ञेय है वो 18वें श्लोक तक हुआ। ये खास पहला प्रकरण हुआ। क्षेत्र चापी माम विद्य आया, तमाशे मेषु और मद भक्त विज्ञा, ये अस्मत् शब्द का प्रयोग है। प्रकृति और पुरुष का विषय उसमें अस्मत् शब्द नहीं है, 34 तक में एक मेरा कुछ कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर केवल प्रकृति और पुरुष इन दो का वर्णन है 19वें श्लोक से। तो 19वें से प्रकृति पुरुष इन दोनों को अनादि समझो, और विकार और गुण ही प्रकृति से पैदा होते हैं। ये गुण एक नया बात है, अभी भी गुण नहीं कहा था, विकार तो कहे क्षेत्र का, अब गुण शब्द और एक बीज डाल दिया। विकारांश से गुणांश से प्रकृति और गुण है जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये इस वास्ते गुणों का आगे वर्णन करना है। प्रकृति जितना गुणों का संग असली जन्म मरण में कारण, गुणों का संग आगे बताएंगे, इस वास्ते गुणों का प्रकरण आया। इन गुणों का प्रकरण बहुत थोड़ा कहेंगे 13वें में, इसका विस्तार 14वें में कहेंगे। गुण कैसे हैं, कितने हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ये 14वें श्लोक में, 14वें अध्याय में इन गुणों का विशेषता से वर्णन। इस वास्ते 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग, और 13वां नामक क्षेत्र क्षेत्र की विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्र का विभाग है, वहाँ तीनों गुणों का विभाग है। यहाँ प्रकृति से अतीत ये बताया, वहाँ गुणों से अतीत परमात्मा ये बात बताई। 11 से गुण है यहाँ पर, पहले बीज डाला, यहाँ पहले आया 7वें श्लोक में अध्याय में, परंतु ज्ञान के मार्ग में यहाँ पर आया। अब कार्यकरण करते हेतु बताया प्रकृति और पुरुष, ऐसे क्या होता है, तो कार्य कर्ण इनकी कर्तापन में कार्य है, ये 16 कार्य है और 13 कर्ण है। मानो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार, ये 13 कर्ण है। महाभूतानि 5 और 5 इंद्रियों के विषय 10, ये कार्य है। तो कार्य कर्ण करते इनके कर्ता पर प्रकृति हेतु है, अर्थात ये कार्य और कर्म प्रकृति से पैदा होते हैं। यतस्त यत जो कहा तीसरे श्लोक में, जिससे जो पैदा होते हैं वो कर्म हुआ, इससे ये पैदा होते हैं। अब प्रकृति का वर्णन हुआ तो प्रकृति में पुरुष से दो कहा तो प्रकृति का वर्णन कर दिया, अब पुरुष का वर्णन करते हैं। पुरुष सुख दुख का नाम भोगते, प्रकृति तो इन कार्य कर्ण के पैदा करने में हेतु है और पुरुष है वो सुख दुखों के भोगने में हेतु है। इतने ही बताया यहाँ, पर एक बात विशेष है समझ लेनी। कार्य कर्ण रूप से तो प्रकृति परिणत होती है, प्रकृति का कार्य होता है, पर सुख दुखों का भोगता जो पुरुष है वो पुरुष का कार्य नहीं है। सुख दुख
पुरुष सुख दुख में
परिणत
भी नहीं होता,
परिणत नहीं होता, ये बात में फर्क है। आगे ऋतु बरोबर होता है परंतु ये परिणत नहीं होता है, सुख दुखों में भोगता पर में हेतु होता है, वास्तव में भोगता नहीं है। ये 31वें श्लोक में होता है सा, ये सत्य जो प्रभाव सत्य है ना, तो पुरुष का वर्णन हुआ, जो प्रभाव से प्रभाव का वर्णन हुआ 31 में, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन से है, न करोति न लिप्यते, न करता है न भोगता बनता है, ये पुरुष का प्रभाव है। 31 में वर्णन किया, इसमें कर न करोति का, 32 में न लिप्यते का, 33 में और 34 में उपसंहार, 13वें अध्याय को उपसंहार 34 में किया। तो पुरुष का वर्णन हुआ, पुरुष के प्रभाव का वर्णन 31 32 33 में हुआ और उपसंहार 34 में हुआ, ऐसे ज्ञान होगा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ये बात कही 34 लोग। अब ये गेय का वर्णन किया तो गेय का वर्णन चलता है, गेय जम ये तत्परोक्षा में तो हो गया, पुरुष प्रकृति सो ही भोगते। अब ये जो भोगता होता है भोगतापन में हेतु, तो उसको खुलासा करते हैं कि जैसे प्रकृति कार्य करने में हेतु है, ऐसे पुरुष भोगता करने में हेतु नहीं है। तो हेतु बताया आपने कि हेतु उसमें पुरुष प्रकृति स्थो ही बनते, प्रकृति में स्थित होता है तभी ये भोगता बनता है और प्रकृति से अतीत है भोगता नहीं है, स्वरूप से ये भोगता नहीं है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति जन गुणों को भोगता है और कारण गुण सोंगो से सदस्य जन्म सो, जो गुणों का वर्णन किया पहले विकार और गुण, वो गुण काम में लिया या वो गुण है ऊंचा नीचा में गुणों का संग कारण है। इसमें मानो सतोगुण वाले ऊपर को जाएंगे, रजोगुण वाले मध्य लोग में रहेंगे, तमोगुण वाले अजोगति हो जाएंगे, तो सदा से योजन सुख कर्म कारण है गुण संग है, नहीं तो पुरुष कैसा है। अब पुरुष का वर्णन करते, पुरुष को गुणों का संग होता है कब, प्रकृतिस्थ होने से वो भोगता बनता है और जिन गुणों के संग से भोगता बन करके फिर जन्म मरण में जाता है, ये बात बताइए। उपदा वास्तव में क्या है कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोगता महेश्वर परमात्मा चाहते तो देश में पुरुष पर, प्रकृति में स्थित न रहे तो पुरुष पर, ये पुरुष बिल्कुल प्रकृति से अतीत है। वो पुरुष उपदृष्टा नजीक रहकर देखने वाले से उपदृष्टा है और अनुमोदन करने से विषयों का आदि अनुमोदन करने अनुमंता है और भरण पोषण करने वाला समर्थ होने से भरता है और सुख दुखों को भोगता है, प्रकृति ये भोगता है और महेश्वर वास्तव में स्वतः परमात्मा के साथ एक है। और परमात्मा कहते हैं महेश्वर क्योंकि सगुण को लिया, परमात्मा का निर्गुण लिया, उसका एक है। देह स्मिन पुरुष पर अस्मिन देह पुरुष पर, ये पुरुष पर है, इस पुरुष का वर्ण हुआ। ये वर्ण करके अब इसका महत्व बताते हैं। जैसे गेह का वर्णन किया, उसमें कहा कि इस गेह को जानने से अमृत मासू से अमर हो जाता है, जन्म मन से रहित हो जाता है। ऐसे ये बन गया यह एवं व्यक्ति पुरुषम भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा देश मन पुरुष पर एवं मनु पर, इस तरह से ये पर सर्वथा प्रकृति से अतीत है। ऐसा जो जानता है यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण ही सा, ये गुण विकार कार्य करने से प्रकृति को जानता है। ये जो ठीक जाने से ये पुरुष पर ये प्रकृति का कार्य सब है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण ही सा सर्वथा वर्तमानों की न से भूयो भी जाए से, सर्वथा वर्तमानों की न से भूयो, वो सब तरह का बर्ताव करता हुआ मानो गृहस्थ आश्रम है, वर्ण आश्रम है, चार वर्ण है, चार आश्रम है और कई चीजें है जिसमें जिस जिस वर्ण में मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सर्वथा न्याय युक्त बर्ताव करता हुआ फिर जन्म नहीं लेता। प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया, ये पुरुष का विभाग है, ये प्रकृति का विभाग है, फिर वो जन्म नहीं लेता, सर्वसंध्या से भूयो भी जाएगी। अब वो पैदा नहीं होता, प्रकृति पुरुष जो उधर दोनों बताए ना, प्रकृति पुरुष उन्नीस हुए, तो प्रकृति और पुरुष के विवेक की बात बताई। प्रकृति और पुरुष के विवेक होने से जन्म मरण नहीं होता, क्यों कि गुणों का संग होने से जन्म मरण होता है और गुणों का संग न होने से जन्म मरण नहीं होता। तो महाराज इस विवेक ऐसे ही इससे ही होता है, ज्ञान और भी है तो सुन, प्रकृति और पुरुष से ज्ञान होता है ये तो होता ही है, पर ध्यान आत्मनिकेत कई महात्मा लोग ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को जानते हैं। कैसे आत्मना आत्मानम पश्यन्ति, अपने से अपने आत्मा देखते हैं। अन्य सांख्यन योग है, अन्य वो सांख्य योग के द्वारा जानते हैं और कर्म योग इनसे अपरे दूसरा कर्मयोग से जानते हैं और अन्य त्रयम अजंत न सांख्य योग जानते न कर्मयोग जानते न ध्यान योग जानते, वे संत महाओं से सुन करके और उपासना करते वही मृत्यु चल जाते, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ये कल्याण के उपाय 24 में बताया और 25 में विशेषता से बता दिया, 23 में बताया, 23 में 24 और 25 में अमित बताया ध्यान और सांख्य योग और कर्मयोग और संत महात्माओं की कहने के अनुसार चलने चार, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति, ते भी मृत्यु चरण वे भी मृत्यु चल जाते हैं। ऐसा बता करके अब बताते हैं पुरुष की बात। पुरुष कैसा है, सच है जो यथ प्रभाव से पुरुष है, तो पुरुष कैसा है, गुणों के संगुण सदस्य जन्म होता है, यावत संजाय दे कि सत्वम स्थावर जंगमम, जो स्थावर हो जंगम हो, चलने फिरने वाले हो जीव चाहे स्थावर जीव हो, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, ये क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से पैदा होते हैं, ये इनकी पैदा की बात बताई दोनों के संयोग से। क्षेत्र क्षेत्र का अगर संयोग न हो तो मुक्ति हो जाती है, ये अगर विवेक हो जाए तो, ये संयोग रहने से ये वियोग होने की बात बताई। पहले बताया यह एवं व्यक्ति पुरुषों, इस प्रकार से जो जानते हैं तो इस प्रकार से जानने वाले ये उस श्लोक बता दिया। फिर ध्यान से और कई कई सांख्य योग से, कई कर्म योग से, कई महात्मा की कृपा से ध्यान के लिए भी श्रुति प्रायण हो जाते हैं। तो कैसा है वो जीव, उस जीव का वर्णन किया, सावर निगम जितना है क्षेत्र से योग से। अब ये बता करके अब फिर बात बताते हैं क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है उसका कैसे अलग अलग हो ये, जिससे जन्म मरण मिट जाए, फिर उपाय बताते हैं। जैसे कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार चलना बताया, चार साधन बताए। अब उसका विवेक कोई करना चाहे तो समम सर्वेशु भूतेषु, ये जितने प्राणी में समान रूप से समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमे, समान रूप में भूत विषम है वो समय है, सर्वेशु भूत तिष्ठन्तम् गच्छस्तु, भूत तो जब विकारी है वो तिष्ठन् स्थित रहता है। विनिश्यत्सु अविनिश्यन्तम्, शरीर नष्ट होता है इसका नाश नहीं होता, यह पश्यति स पश्यति, वही ठीक देखता है, अविनाशी को देखता है, इनमें अनेकों में एक को देखता है, ये व्यापी उनको व्यापक देखता है, वो ठीक देखता है। मारे क्या हो जाए ठीक देखने से, कि समम पश्यति सर्वत्र, समवस्त्र ईश्वर में समान रीति से स्थित है, उसको समान देखता रहे, वो देखता हुआ जन्म मन से रहित हो जाता है। समम पश्यन ही सर्वत्र समम अवस्थित ईश्वरम न हिन्स्ति आत्मा न आत्मानम, वो अपनी हत्या नहीं करता। जो ऐसे पुरुष को नहीं देखता, शरीर को अपना मानता, वो आत्मघाती महापापी है, जन्मेगा मरेगा शरीर के साथ होने से। जो इनको अलग करता है वो अपनी हिस्सा नहीं करता, हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात कर रही सहयादि परमांग। अब कहते हैं जो कार्यकरण करते थे, जो पुरुष है जो प्रकृति से भोगता है, तो भोगता क्या है, तो कहते प्रकृति से कर्माणी, ये समम पश्यन तो चेतन को बताया, और नहीं तो क्रिया जितनी हो रही है सब प्रकृति के द्वारा हो रही है। प्रकृति से कर्माणी क्रियमानानि सर्वशः, यह पश्य धर्म आकर्षा केवल प्रकृति द्वारा ही क्रिया सब होती है, ऐसा देखता है वो आत्मा का अकर्ता रूप वो देखता है, न से भूयो भी जाए से वो अकर्ता रूप से देखता है। यदा भूत जिस काल में भूतों के पृथक भाव को प्रकृति में देखता है, उसने विस्तार देखता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये दो श्लोकों में ये बात बताई भगवान ने। अब उसका प्रभाव विशेषता से कहते हैं, अनादि होने से निर्गुण से प्रकृति बुद्धि विद्यादि अनादि दोनों अनादि है, परंतु वो निर्गुण नहीं है, गुणा से बुद्धि प्रकृति संभव, गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। आत्मा तो अनादित्व निर्गुणत्व, परमात्मा अयम अव्यय, अयम आत्मा परमात्मा स्वरूप है, अविनाशी है। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते, शरीर में स्थित रहता हुआ भी स्वरूप से न करता होता न लिप्त होता, कर्ता भोगता है होता नहीं है वास्तव के, मारा कर्ता नहीं होता कैसे नहीं होता, लिप्त कैसे नहीं होता, तो इसका नहीं लिप्त होगा इस बार एक श्लोक में कहा, और कर्ता नहीं होता एक श्लोक में कहा। जैसे आकाश सब जगह रहता हुआ भी किसी में लिप्त नहीं होता, सब क्षेत्र में रहता हुआ लिप्त नहीं होता, और यथा सर्वस्त यथा प्रकाश, ये कैसे जैसे सूर्य एक सबको प्रकाशित करता है, सबको सत्ता देता है, सब उसकी सत्ता से काम करते हैं, पर उसमें कर्तृत्व तो नहीं है। सा सर्वस्त सूक्ष्म आकाशन नोपलिप्य लिप्त नहीं होता, तथा प्रकाशित है कृष्ण कृष्ण रोगी संपूर्ण क्षेत्र को ये प्रकाशित करता है, ये लिप्त नहीं होता केवल प्रकाश करता है। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सूर्य के प्रकाश में कोई वेद पाठ करता है, कोई सूर्य के प्रकाश में शिकारी खेलता है, इनको मारता है, तो प्रकाश तो सबको मिलता है, पर ना तो वेद पाठ के पुण्य का भागी होता सूरज, और ना शिकारी के पाप का भागी सूरज होता। प्रकाश सामान्य मिलता है, वो प्रकाश देता नहीं सर्व प्रकाश होता है, ऐसे आत्मा के प्रकाश में सब काम कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम, क्षेत्र क्षेत्र से क्षेत्रम और ऐसे दियो से क्षेत्रज्ञ। अब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का और क्षेत्र के साथ अपनी एकता, वो ज्ञ के साथ एकता है, ये बात बताई। ऐसे क्षेत्र के और अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ये ज्ञान चक्षु से दिखा भाई, ज्ञान समझ से दिखेगा, ऐसे हो जाते हैं तो प्रकृति भूत, प्रकृति भूत नाम कार्य, प्रकृति नाम कारण, इनसे अभाव हो जाता, परम ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये अंतिम श्लोक क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को जानने वाले की महिमा, क्षेत्र क्षेत्र का विभाग बताया, प्रकृति पुरुष के विभाग बताया, प्रकृति बुद्धि आदि वहाँ प्रकृति बताया, इति क्षेत्र ज्ञान वहाँ बताया, ध्यान सांख्य योगे न कर्म योगे न, और अन्य महात्मा सुनने से बताया, फिर समान रीति से सब व्यापक है, प्रकृति के द्वारा क्रिया होता है, इसके द्वारा क्रिया नहीं होती, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है जो कोई सबको प्रकाशित करता है समान रीति से, क्षेत्र क्षेत्र एवं मंत्र विज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षराम वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसे माध्यम हो गए दोनों प्रकरण, प्रकृति पुरुष वाला एक क्षेत्र इसी क्षेत्र एवं क्षेत्र क्षेत्रीय और प्रकृति पुरुष, यही बात चल भाई ना, ये एवं व्यक्ति पुरुष हम प्रकृति उड़ीसा, वो भी सब विवेक आया क्षेत्र क्षेत्र की तरह, इससे मुक्ति हो जाती है। ये चौथे में चौथी इसमें उपसंहार करते
हैं, क्षेत्र की तो
नहीं आया, वो तो उसमें आया पहले प्रकरण में जिसमें भक्ति का वर्णन है,
दोनों का उपसंहार,
दोनों को उपसंहार कर दिया इसमें दोनों प्रकरणों का। ये चौथी श्लोक है, कितनी सुगम सरल गीत है, साफ साफ ऐसे नारायण 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 राम राम राम। ये तो गीता पढ़ने वालों के लिए बात बताई, गीता विचार करें सब पढ़ सकते हैं, मेरी समझ से भाई बहन जो थोड़े पढ़े लिखे हैं गीता पढ़ते हैं वे गीता को याद कर सकते हैं ठीक तरह से, और जिनको गीता याद है उनकी दूसरी दिशा की बात है, 118 और 1934 तक ये प्रकरण है, उन्हें पहले ज्ञेय का वर्णन ज्ञान का वर्णन हुआ, फिर ज्ञेय का वर्णन हुआ, फिर उपसंहार किया, फिर प्रकृति पुरुष का वर्णन हुआ, फिर प्रकृति क्या करती है पुरुष क्या करते आया, पुरुष कैसे भोगता होता है प्रकृति से होता है नहीं तो ये पर है, ऐसे ज्ञान का माध्यम बताया, उस पर वर्णन के ध्यान योग ज्ञान योग कर्म योग ये बताए, इसके बाद में समान से परमात्मा जो सही खेल खेल पैदा होते हैं समान समान से देख रहा हूँ परमात्मा प्राप्त हो जाता है, और वो परमात्मा न करो तीर न लिपेते 31 में कहा, और न करो तीर न लिपेते न लिपेते 32 में, न करो तीर 33 में, और 34 में उपसंहार, ठीक से मनन कर लो योगिता या सामने सब सब दिख रहा है, नारायण 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 नारायण। अब एक बात बताते हैं आपको, जो मैंने आरंभ में कहा कि संसार का मूल कारण अभिमान मैंपन है, उस मैंपन को चाहे शुद्ध कर दो और चाहे मिटा दो चाहे बदल दो, मिटा दो तो ज्ञान योग से, शुद्ध कर दो कर्म योग से, और बदल दो भक्ति योग से, कल्याण हो जाएगा। अब उसमें भक्ति योग से बदलना सुगम है, इसमें थोड़ी सी बातें बताते हैं, अब गीता का प्रकरण हुआ, अब थोड़ी सरलता से सब भाई बहन समझे जैसी बात, अपना संबंध खास परमात्मा से है, 15 के मम ही वान सो जीव लोगे जीव भूत सनातन, परमात्मा का साफ सदर्श, यहाँ क्षेत्र की बताया वो परमात्मा का अंश है, अब परमात्मा का अंश हो करके संसार में क्यों फंस गया कि प्रकृति के अहंकार को पकड़ लिया, वो मैं हूं ऐसा पकड़ लिया, मैं और मोर तोड़ते ही माया जय बस की ने जीव ने खाया, इसमें फंस जाने से धर्म मरण को प्राप्त होता है, तो इस धर्म मरण से रहित हो जाए तो क्या करे, तो भक्ति सीधा उपाय भक्ति का है, भगवान की भक्ति करे, वो कैसे सीधा है तो केवल मैंपन को बदल दे, बदलने क्या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, फिर भगवान आप ही काम करेंगे। अरे जिसकी गोदी में जो आ जाए वो माँ, उसका पालन करो, उसकी क्या परवाह है, वो पालन करने की परवाह ही नहीं करता, माँ ही पालन करती है। ऐसे भक्ति से भगवान के चरणों के शरण हो जाए, उसका पालन भगवान करे, भगवान पर जिम्मेवारी है। ऐसी भक्ति बढ़िया चीज है, केवल भगवान के साथ अपनापन करने भगवान मिले। जैसे लड़की ब्याह होने पर अपने पीहर से संबंध न रखकर और ससुराल से संबंध कर लेती है, इतना गाढ़ संबंध हो जाता है, मैंने कहा था परसों, इतना गाढ़, एक माह से पैदा हुई दो बहना, एक माह का दूध पिया, एक माह की गोदी में खेली, एक साथ रही, ब्याह देने के बाद बहन उतनी अपनी नहीं लगती, देवरानी जितनी अपनी लगती, देखो तमाशा, एक माह से पैदा हुई, एक बाह का दूध पिया, एक बाह की गोदी में खेले, ऐसी वो अपनी नहीं दिखती। ऐसा ब्याह हुआ अपने को बदल जाए, मैं ससुराल की हूँ तो ससुराल की देवरानी जितनी अपनी दिखती है, खास माँ से ही बहन अपनी नहीं दिखती, क्या कपड़ा मान लिया। ऐसे ये जीव अगर भगवान को अपना मान ले, निहाल हो जाए, कोई पंचायत नहीं कर रहे। इस बात भगवान माम एक शरणम ब्रज, सबसे श्रेष्ठ उस उपाय बताया है, भक्ति ठीक है, भगवान को अपना मान लो, फिर भगवान आप ही काम करेंगे, जो कुछ करना हो भगवान करेंगे। लड़की ससुराल को स्वीकार कर लेती है तो लड़की के रहने का प्रबंध कौन करे, ससुराल करे, उनके गहना कपड़ा रोटी का प्रबंध कौन करे, ससुराल वाले करे, रक्षा कौन करे, ससुराल वाले करे, उनके बाल बच्चों का कौन करे, ससुराल वाले करे, वो तो ससुराल अपने आप को सौंप दिया, अपनी चिंता मेरी बारिश। ऐसे भगवान को जो अपने आप सौंप देता है, उसका निर्वाह करे भगवान, पान पोष करे भगवान, कहाँ क्या होगा, किस जगह जाएगा, कहाँ जन्मेगा, उसका सब प्रबंध भगवान के ऊपर होगा, अपना होगा ही। इसमें एक आपको कथा सुना, जनकपुरी में रहने वाली एक ब्राह्मणी, उस ब्राह्मणी के बालक था, क्या नाम, प्रयागदत्त, प्रयागदत्त नाम था एक बालक, उस ब्राह्मणी के गोद में एक बालक ही रह गया और सब घर के मर गए, अकेली रह गई, बच्चों को खिलाती प्यार करती, अब क्या करे, वो कोई राह नहीं, तो बच्चा खेलने के लिए जाता तो कोई बालक तो अपनी बहन के गोदी में है, कोई बालक अपने भाई के गोदी में है, अब प्रयाग दत्त तो अकेला ही रह गया, तो लोगों ने सिड़ाया तू अकेला है, तेरे भाई है ना कोई बहन, तू अकेला ही है, तो उसको दुख हुआ, मैं अकेला ही हूं, देखो छोटे छोटे बच्चे के, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मैं बहन की गोदी में हूं, मैं भाई की गोदी में हूं, तू अकेला रह गया, तो उसको दुख हुआ, तो रोने लग गया, रोकर गया माँ के पास, माँ के पास रोने लगा, बेचा रोता क्यों है, कि माँ छोरा चिढ़ावे मेरे को कि तू अकेला रह गया, समझे, किसके साथ बहन है, किसके साथ भाई है, मेरे साथ तेरे साथ ना बहन है, तेरे साथ भाई है, माँ मेरे बहन भाई कोई नहीं है। बहन माँ ने सुना, माँ का बिखरे भर आया, अब क्या बताऊ छोटे बच्चे को, क्या बताऊ, मेरी कोई बहन भाई नहीं है, कि नहीं भैया नहीं, क्यों तेरे बहन है, माँ वो कहाँ गए, बस बहन मिल जाए तो मैं भी कहूंगा मेरी ही बहन है, मैं भी कह दूंगा, मन में बड़ा संतोष हुआ कि मेरी बहन है, माँ वो कहाँ है, तो भाई बहन तो ब्याही गई अपने घर पर है, ब्याहने के बाद यहाँ थोड़ी रहती है बहन, तेरे बहन कौन है, कि सीता जी है, जानकी जी, जनकपुरी में रहने वाली माताएं जानकी जी को बेटी मानते हैं, अयोध्या में रहने वाले राम जी को अपना बेटा मानते हैं, तो वो अपने सीता जी को बेटी मानती थी। तो मेरी बेटी होगी तो बेटा मेरी बहन होगी, तेरी बहन है माँ, तो मैं तो बहन से मिलूंगा, सोलह मिजाज करेगा हमारे बहन है, तेरे कोई नहीं है। तो फिर बहन कैसी? अरे किसी छोरी कैसी बहन नहीं, गांव भर में कोई छोरा है उसकी ऐसी बहन नहीं है जैसी तेरी बहन है। ऐसी सुंदर है, इतनी धनवती है, ऐसे गुणवती है, ऐसे दुनिया का पालन करती है, सब दुनिया का पालन पोषण करती है, ऐसी तेरी बहन है। अब गुण गए बहन के, मन तो था ही बहन मेरे, माँ मैं तो मिलूंगा, कहाँ है वो? अयोध्या में है भाई, अयोध्या ब्याजी गई है, वहां है भगवान श्री रामचंद्र जी है, उनके साथ ब्याह हुआ है तेरी बहन का, तो वो तो अपने घर पर है। माँ मैं तो जाऊंगा, बहन से मिलूंगा, ये छोरा मिजाज करते, मेरी बहन तो मेरी भी बहन है, तेरी बहन बहुत श्रेष्ठ है, किसी छोरे की बहन नहीं है। ये कितनी बहन बैठी है ना, ऐसी बहन किसी की नहीं है। जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अति प्रिय क्रिया करुणा निधान की। तो माँ मैं जाऊंगा, बेटे ना ठहरे बेटा, तू छोटा है ना, बड़ा हो जाए तब जाना, थोड़ा बड़ा हो जाए। दूसरे तीसरे का माँ, अब तू बड़ा हो गया ना, मैं कैसा भोला बालक है, अब दो चार दिन में बड़ा हो गया, कहने बिछा जाए फिर जाना। अब मन में बहन ही बहन बसे, अब बहन की बात सुने, कैसी बहन है, कैसी रूपवती है, कैसे गुणवती है, कैसे बोलती चलती है, कैसे रहती है। और माँ को आनंद आवे सीता जी का वर्णन करने में, क्योंकि सीता जी के प्रति पुत्र भाव है, पुत्री है मेरी, इस बात उनको आनंद कहने में आवे। और बहन के गुण सुनने में प्रयागति आनंद आवे, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, बहुत चित्त आकर्षित हुआ। तो अयोध्या के जा रहे थे वो, अयोध्या जाने वालों को कहा भैया ये प्रयागदत्त तुम्हारे साथ जाओ, तुम साथ में ले जाओ, इसको बहन से मिलना है, बहन अयोध्या में, तो साथ के ले जाओ। बहन को क्या दूं? तो मगध कसार भेजा करती, आजकल तो मैंने अच्छी है, पुराने जमाने में माँ बेटी के लिए मगध चीनी में बनाया हुआ मगध होता है, गुड़ में बनाया हुआ कसार होता है, कसार मगध बना करके वो देती, ये बेटी के लिए भेजने की चीज, तो पुत की बांध कर दे दी। ये बात माँ का हाथ का है, माँ के हाथ का कसार मिलेगा, मगध मिलेगा, बेटी कितनी राजी होगी। पुत की बांध दे दी, ये रहना बहन को, बहन से मिलना और मेरी बात कह देना, और ये माँ ने दिया दे जाना। अब सब चले वहां से, मगध की कसर बांधी हुई पोट की है, चले। साथ में चलने वाले कितनी विश्राम करते हैं, ठहरती इसकी लगन लगी बहन की, साथ में रहे पर अकेली चलती है। अयोध्या किधर बता दे, जिस गांव में जाओ माताएं देखे, अरे भूली करेगा, बड़े घराना का लड़का है महाराज, सीता जी का भाई है, अरे भाई आओ बेटा भोजन कर ले, खा ले, हरेक मेरे वही प्यार करे, गोदी ले रहे, भोजन करावे, अब भोजन करो, बड़ा घराने के दर का ठहरा। अयोध्या पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, कौन सा गांव आ गया? अयोध्या। अब खुशी आ गया, बहन का गांव आ गया, अब से बहन का गांव आ गया, बड़ी आनंद है। बताओ भाई मेरी बहन का घर कौन सा है? अब तेरी बहन कौन है, क्या है, बताओ भैया, मेरी माँ ने बहुत देर भेजा नहीं, अब भेजा है तो बताओ मेरी बहन का घर कौन सा है। अब वो बताओ तू कौन है, कौन तेरी बहन है, अब तेरी मेरी बहन का घर बताओ कौन तेरी बहन। मेरी तो है सीता जी, जनकपुर से आया हूँ बहन से मिलने के लिए। अरे किसको ब्याह की? रामचंद्र जी को। तो बोला रामचंद्र जी का घर पूछ, बहन का घर पूछा करें, यहाँ बहन का घर कौन बताएगा, रामचंद्र जी घर कौन सा है पूछ। तो श्री राम से घर कौन सा है तो मन सकता है, ये देखो रामचंद्र, ये सीता जी है। अरे सीता जी है नहीं, सीता जी मेरी मेरी बहन है, तो दूसरी है। अब जावे सांस मंदिर मिले, नंद मंदिर में सीता जी की मूर्ति, लोग कहते ये सीता जी है, उसका मन भर है, सीता जी कैसे है, मेरी बड़ी बहन है, मैं कसा मगध दूंगा, वो लेगी मेरा प्यार करेगी, मैं छोटा भाई हूँ, बड़ी बहन तो माँ की तरह ही होती है, मेरे को गोदी लेगी, मेरा प्यार करेगी। तो दिन भर घूमा सा, तरह तरह के मंदिर देखे, वे कहते रहे मूर्ख ये तो है सीता जी, ये राम जी है, ये सीता जी है। दाल दिया शाम होगी तो गया अर्जुन एक तरफ, अयोध्या में बैठ गया एक तरफ जाकर के। अब चिंता लगी, पहले तो माँ ने आज्ञा नहीं दी, सोरा सुराते तेरे बहन नहीं है, अरे मेरी बहन है, अब यहाँ आया तो बहन मिलती नहीं, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, बहन कैसे मिले, कैसे कहूँ। मन में उम्मीद थी बहुत ज्यादा, बहन मिली हुई है, ऐसे गोदी लेगी, मेरा प्यार करेगी, मेरे हृदय लगाएगी, कई उम्मीद आई भीतर में, बहन मिली नहीं, दिन भर हैरान हो गया, रात ही बैठा गया था, बहन कैसे मिले, बहन कैसे मिले। ये जो भगवान की प्रतीक्षा है ना, ये भजन बड़ा ऊंचे दर्जे का है, भगवान की अड़ी लग जाए, भगवान मिले, बहन मिले, बहन मिले, बहन मिले, ये जब हो रहा है हमारा भजन हो रहा है, भजन करना नहीं पड़ता है, जैसे प्यासे को जल का भजन थोड़ा ही करना पड़ता है, भूखे को बस भोजन का भजन नहीं करना पड़ता, बार बार याद आती है, माँ कहीं चली जा तो बालक को माँ का भजन करना थोड़ी, माँ माँ वो तो आप ही होता है, ऐसे मेरी बहन भीतर से हो रहा है। तो मेरा सच्ची उपासना होती तो बहन आए मैंने कह सके, राम जी तो फिर भी कठोर है, सीता जी कोमल बहुत है, माइया बहन कोमल है, भाई लोग तो कोमल नहीं है। ये कोई भी बाजार में बैठा है कहीं साधु हो, भाई 10-15-20-50 निकल जाते उससे, माई कोई तुम बाबा जी भूखे हो लो रोटी लो, माइयों में दया होती है, क्योंकि हमारा पालन माता ने किया है, तो मातृ शक्ति में दया होती है, तो वो माँ बहन को याद कर रहा है, तो सीता जी से कैसे रहा जाए, अब छोटा भाई याद कर रहा है, तो देखा एक तरफ ऐसे जाते में प्रकाश हो रहा है, यही प्रकाश कहेगा है, सूर्य तो पूर्वी तरफ उदय होता है, ये तो उत्तर की तरफ है, कैसे है प्रकाश हुआ, क्यों चैस्त शाम धारित पूरा सड़क शरीर विभाग पहले चैस्त शाम पूरा तेज तेज दिखा, उस तेज में देखते एक हाथी, उस तेज में हाथी दिखा, बड़े हाथी दिखा सफेद, अब देखा सुना हाथी काला होता है और ये सफेद हाथी है, उस पर राजा और रानी बैठे हुए, प्रकाश आ रहा है, कोई होंगे राजा आए होंगे, अयोध्या तीर्थ है इसमें आए होंगे कोई राजा, हमें क्या मतलब है, वो तो हाथी नजदीक आ गया, बता नजीक आया नजीक हाथी निसरने लगी, निसरने से बहन उतरी, प्रयाग नच प्रयाग नच अरे बहन आ गई बहन, अब तो खड़ा हो गया छोटा छोटा सा, बहन के पकड़े कपड़े पकड़ लिए, ऊपर के देखे अब लगा रोने, बड़े अब जोर जोर से रोने लगा, बहन कहते भैया रोता क्यों है, तू मिली नहीं, दिन भर मेहरान हुआ तू मिली नहीं, और से ऐसा आदमी रखती है गांव में जो तेरा घर बताते नहीं, बताते हैं घर मैं जाता हूँ वहां पर तू मिलते नहीं, तो ऐसे आदमी को तुम रखती है अपने राज में जो कोई घर ही नहीं होता तेरा। सीता जी बोली भैया उनका दोस्त नहीं है, हमारे घर को सब जानते नहीं है, इस बात नहीं बताए कोई बात, अब रोता क्यों है? मैं इतना दुख पाया तू मिल ही नहीं, अब इसे भरियाया रोए बार बार। सीता जी को दे दिया अपने कुपड़े आंख ऐसा लगा, भैया रो मत, अब तो मैं मिल गई ना, मिल गई मैं इज्जत हुआ तू इसी तेरी से मिली। अपना होता अपने जनों के सामने दुख दुगुण होकर भाषता, मानी नहीं अपमान सहता। वो महाराज अपना मामा और बैल मिली दिन ज्यादा रोना, बैल ने गोदी लिया आंसू पूछे तू रो मत, बैल खुश माँ जी माँ खुश है, कहा माँ वहां खुश है, और माँ ने ये कसार दिया, ये मगज दिया से उदाहरण के लिए सीता देते दिया सब माँ के हाथ की चीज है, बेटी खुशी लगी माँ के हाथ की चीज है, उसको कुछ आपने ले लिया। फिर पटी बन के बेटा भैया ये तू खा लेना, इतना तू खा लेना, ऐसे देखा बात है। इतने में रामचंद्र जी महाराज पास में खड़े, तू बोले प्रयाग दत्त जी आपके माँ जी खुश है, अब सास के समाचार पूछे, अब देखने लगा मेरे बहनों ये जीजा जी भी कितने सुंदर है और बहन भी कितनी सुंदर है, माँ कहती थी पर माँ कहती थी इसलिए बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत गहने कपड़े और सुंदरता, अब देखे राम सिंह की तरफ देख सीता जी की तरफ देख बावला में हो गया, वाह 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 आज मिल गए, बहनें जी भी मिल गए, बहन भी मिल गई साथ ही, क्यों प्रयास जी माँ जी खुश है, हाँ माँ जी खुश है, हम समाचार जी बहन में लगे, अब महाराज बातों में लग गया, तो बातों में लगे तो क्या हुआ कि भगवान ध्यान में आ गए, चुपचाप बैठ गया, अब भी तो बहन सर बहनों से मिलता है बातें होती है मस्त होता है, ध्यान में गया। एक संत सुबह ही बाहर गए सोच आदि को, देखा एक बच्चा बैठा है चुपचाप मूर्ति काट की तरह मूर्ति में बैठा है और मस्त हो रहा है, देखा भाई अयोध्या है या कई भक्त आते हैं, कोई भक्त होगा उसको जगह है, कौन है तू कहाँ, बहन कहाँ गई, बहन बहन जगह तो ध्यान टूट गया, ध्यान से देखी बहन कौन, बहन सीता जी मेरी बहन तू कहाँ गया,